नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में भारत को चौथा कांस्य पदक दिलाया। पहलवान अमन सहरावत 57 किलो के सेमीफाइनल में पहुंचे। नीरज चोपड़ा आज रात भाला फेंक में फिर स्वर्ण पदक जीतने के लिए फाइनल में उतरेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी के साथ बांग्लादेश और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा, ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश से वापस आने वाले भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। संसद में वित्त विधेयक पारित। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। और ब्रिटेन में धुर दक्षिणपंथी प्रदर्शनों का मुकाबला करने के लिए हजारों नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में भारत को चौथा कांस्य पदक दिलाया है। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर 50 साल बाद ओलंपिक में लगातार दूसरी बार पदक जीता है। एक रिपोर्ट।
भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। आज खेले गए शानदार मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत सिंह की बदौलत भारत ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया।
क्या भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ओलंपिक मेडल और 50 साल बाद बैक टू बैक ओलंपिक मेडल जीते हैं।
हरमनप्रीत ने 30वें और 34वें मिनट में भारत के लिए पेनल्टी कॉर्नर से गोल दागे और फिर भारत की रक्षा पंक्ति ने पूरे मैच में मजबूती दिखाते हुए स्पेन को गोल करने से रोक दिया। स्पेन की ओर से एकमात्र गोल मार्क मिरालेस पोर्टिलो ने पेनल्टी स्ट्रोक से किया। भारत ने पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था जब उसने जर्मनी को पराजित किया था। इससे पहले लगातार दो बार 1968 में मैक्सिको ओलंपिक और 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीते थे। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
वहीं कुश्ती में अमन सहरावत 57 किलो के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। रात 9:45 उनका मुकाबला जापान के हिगुची से होगा। क्वार्टर फाइनल में अमन ने अल्बेनिया की अपकारोव को 12-0 से हराया था। रात करीब 12:00 नीरज चोपड़ा भाला फेंक के फाइनल में फिर से स्वर्ण पदक जीतने के लिए खेलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह जीत भारत के लिए गर्व का विषय है और भारतीय हॉकी टीम फिर से मजबूत होने के लिए प्रशंसा की पात्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम की सफलता उसके कौशल और टीम भावना की परिचायक है। उन्होंने कहा कि भारतीयों का हॉकी के साथ भावनात्मक जुड़ाव है और ये पदक देश के युवाओं में हॉकी को और लोकप्रिय बनाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के बारे में संबंधित आयोग फ्यूचर होस्ट कमीशन के साथ बातचीत शुरू कर दी है। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। फ्यूचर होस्ट कमीशन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की समर्पित संस्था है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी के साथ बांग्लादेश और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने श्री डेविड के साथ फोन पर बांग्लादेश और पश्चिम एशिया की स्थिति पर बातचीत की। ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश से वापस आने वाले भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि 9000 विद्यार्थियों सहित लगभग 19000 भारतीय नागरिक इस समय बांग्लादेश में हैं। सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तय करने के लिए उच्चायोग के साथ लगातार संपर्क में है।
इस मुद्दे पे हमारी बातचीत वहां के सरकार से चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर हमारा हाई कमीशन के अलावे 4 और असिस्टेंट हाई कमीशन भी हैं, उनकी सुरक्षा के लेके और वहां पर जो हमारे लोग रहते हैं उनके सुरक्षा को लेके हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जल्द से जल्द वहां कानून व्यवस्था सुधरे ताकि हम लोग अपना जो काम काज है वो जल्द से जल्द शुरुआत हो।
इससे पहले सरकार ने भारतीय छात्रों को सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि विदेशों में भारतीय छात्रों की सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उधर बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार अब से कुछ देर बाद शपथ लेगी। करीब 15 लोग अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में शपथ ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। संसद ने वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक तथा जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज पारित किया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार कोविड के बाद से लगातार पूंजीगत व्यय पर ध्यान देकर अधिक से अधिक राशि खर्च कर रही है। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 15,02,000 करोड़ रुपए यानी 18% रहा है। वित्त मंत्री आज राज्यसभा में वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब दे रही थी।
इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन बी पेग्ड एट 15.02 लाख करोड़ और 18% ओवर 23-24. सो वी आर कंटिन्यूअसली सिंस आफ्टर कोविड एम्फसाइजिंग एंड स्पेंडिंग हायर एंड हायर अमाउंट्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार प्रस्तावित कानून आगे की जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास इस विधेयक के बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।
अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें। इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे, लेकिन देश के लिए जो सही है हम जरूर करेंगे।
श्री रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक निकाय के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है।
इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है।
उन्होंने कहा कि ये कानून सच्चर समिति और पिछली सरकारों के विभिन्न समितियों के सिफारिशों के अनुसार लाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में कई खामियां हैं और कुछ लोगों ने इन बोर्डों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि विधेयक हितधारकों के साथ बिना उचित परामर्श के लाया गया है। उधर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, वामपंथी और अन्य दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बताया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन अधिनियम वर्ष 1934 में लाया गया और इसके बाद उसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए। उन्होंने बताया कि इन संशोधनों ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जैसे संगठनों के कामकाज के मामलों में बहुत सारी अस्पष्टता और विरोधाभास पैदा किए। ऐसे में ये विधेयक इन मामलों पर स्पष्टता रखेगा। सरकार ने कहा है कि देश ने परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने परमाणु और ईंधन प्रौद्योगिकियों में व्यापक क्षमताएं हासिल कर ली हैं। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के तय रूप से पूरा होने और मंजूरी मिलने पर वर्तमान स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 2031-32 तक 8,180 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन में धुर दक्षिणपंथी प्रदर्शनों का मुकाबला करने के लिए हजारों नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। साउथ पोर्ट में चाकूबाजी के बाद कई दिनों की अशांति के बीच देशभर में हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लंदन, ब्रिस्टल, ब्राइटन, बर्मिंगहम, लिवरपूल, हेस्टिंग और वाल्थमस्टो जैसे शहरों और कस्बों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच सरकार ने देश में व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शनों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेलिंगटन में सफल द्विपक्षीय बैठकों के बाद आज शाम ऑकलैंड पहुंची। इस दौरान सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए और न्यूजीलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते का समर्थन किया। इससे पहले दिन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में गवर्नमेंट हाउस में एक राजकीय भोज का आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में एक नई प्रगति हुई है जो उच्च स्तरीय संपर्कों और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान कल से 15 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जाएगा। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अनुरोध किया कि अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वर्ष 2022 में शुरू किया गया था।
देश के हर घर तक तिरंगा पहुंचे, सम्मान के साथ में तिरंगा फहराया जाए। इस बार भी 9 से 15 तारीख तक तिरंगा उत्सव मनाया जाएगा जिसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। देश के सभी प्रमुख भागीदार इसके साथ जुड़ करके और आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ये एक सफल आयोजन हो और पूरा विश्व एक बार फिर भारत की सामूहिकता की शक्ति को अनुभव कर सके।
भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर पूर्वानुमान को 7.2% पर यथावत रखा है। द्विमासिक समिति की बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति में गिरावट का रुख है और तीसरी तिमाही में समग्र मुद्रास्फीति और नीचे आ सकती है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं स्पर्श सक्सेना।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 582 अंक की कमजोरी के साथ 78,886 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 180 अंक की गिरावट के साथ 24,117 पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया डॉलर के मुकाबले एक पैसा गिरकर 83.96 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $78.40 प्रति बैरल पर थी।
सरकार ने कहा है कि विदेश में भारतीय नागरिकों के साथ साथ वहां की जेलों में बंद कैदियों की सुरक्षा भी उसकी प्राथमिकता है। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एक लिखित उत्तर में बताया कि वर्तमान में 9,728 भारतीय कैदी विदेश की जेलों में बंद हैं। पिछले 10 वर्ष में लगभग 125 भारतीय कैदियों को विदेश में मृत्युदंड की सजा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से वायनाड के कलापट्टा में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इस बीच केरल और कर्नाटक की सैन्य इकाइयों से आए लगभग 500 सैन्यकर्मी वायनाड से वापस लौटेंगे। मिजोरम और असम के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों की कल मंत्रिस्तरीय वार्ता होगी। दोनों राज्यों के प्रतिनिधिमंडल आइजोल के राज्य अतिथि गृह में मिलेंगे। मिजोरम के मुख्यमंत्री लल्डुहोमा के नेतृत्व वाले जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM के सत्ता में आने के बाद यह पहली सीमा वार्ता होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में भारत को चौथा कांस्य पदक दिलाया। पहलवान अमन सहरावत 57 किलो के सेमीफाइनल में पहुंचे। नीरज चोपड़ा आज रात भाला फेंक में फिर स्वर्ण पदक जीतने के लिए फाइनल में उतरेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी के साथ बांग्लादेश और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा ढाका में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश से वापस आने वाले भारतीय नागरिकों के संपर्क में है। संसद में वित्त विधेयक पारित। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।